मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 9 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की शुरुआत मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कुछ संबोधन से करना चाहूंगा और उसका कारण यह है कि बस अब इसी रविवार को हम और आप सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तब तो फिर ढेर सारी बातें होंगी। पूरा 15 दिन का जो मेरा वक्त होगा और जो आप लोगों का वक्त होगा एक दूसरे के साथ ही होगा। हम सब ढेर सारी बातें करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में जो बहुत से प्रश्न होंगे, जो समस्याएं होंगी तैयारी को लेकर के, आप सब व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे, उस स्तर पर भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन कुछ बातें मुझे इससे पहले आप सबसे कहनी है। मित्रों कहनी यह है कि आपकी अब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आपको ये यात्रा कैसे करनी है, इसे आपको एक अनुभव की यात्रा बनाना है, अनुभव का सफर। साथ ही साथ इसे आपको जीवन के एक लैब की तरह भी लेना है, जीवन का लैब, यानी कि जहां आप प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। दोस्तों जब भी यात्रा की शुरुआत होती है एक जर्नी फीवर दिमाग में आने लगता है, एक बुखार सा चढ़ने लगता है, दिमाग में आशंकाएं घर करने लगती हैं, आपके भी कर रही होंगी। लेट अस ट्राई, अभी चाहे तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि सफर करने से पहले आपके दिमाग में किस किस तरह की आशंकाएं आ रही हैं। आप घर से निकलेंगे भोपाल आने के लिए, वहां से कौन कौन सी आशंकाएं आपको सता रही होंगी कि ऑटो टाइम पर मिलेगा कि नहीं, ऑटो मिल जाएगा तो आप स्टेशन समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, फिर ट्रेन में चढ़ पाएंगे कि नहीं, चढ़ जाएंगे तो सही तरीके से भोपाल या हबीबगंज स्टेशन तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि रास्ते में चोरी हो जाए, फिर जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पर उतरेगी रुकेगी तो आप उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, जब उतरेंगे तो फिर आपको ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जहां आपको जाना है वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो जगह मिलेगी कि नहीं, इस तरह ढेर सारी आशंकाएं आपके दिमाग में होंगी। बेहतर होगा कि आप उनकी लिस्ट बना लें ताकि आप चेक कर सकें कि जब आपकी यात्रा समाप्त हुई तो उसमें से कौन कौन सी आशंकाएं सही साबित हुई, राइट। इससे आपको बहुत बड़ा बल मिलेगा भविष्य के लिए। तो मित्रों अब जो मैं आपसे बातें बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से सुने। आप अपने घर से निकलें, बहुत इत्मीनान से निकलें, माता पिता के पैर छू करके, बड़ों से आशीर्वाद लेकर के, अपने ईश्वर को याद करके, जो भी आपकी अपनी परंपराएं हैं उसके तहत आप जो भी करते हैं, बकायदे और शांत मन से निकलें और एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के निकलें कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, है ना। आप टाइम बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं, आप पैसा फूंकने नहीं जा रहे हैं, आप एक बहुत निर्मल और बहुत पावन और बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए अपने घर से जा रहे हैं। माता पिता से, बड़ों से आशीर्वाद लेकर के आप चलिए, मन को शांत रखिए, आराम से ऑटो पकड़िए और आपका जो व्यवहार है वो पूरे यात्रा भर बहुत ही संतुलित होना चाहिए, बहुत ही संतुलित। और ये संतुलन तब बनेगा जब आप अपने दिमाग से सारी हर तरह के तनाव और दबाव को हटा देंगे। स्टेशन पर वेल इन एडवांस पहुंचिए, कम से कम 15 मिनट पहले आपको अपने स्टेशन, एयरपोर्ट, जिससे भी आप बस स्टैंड से आना चाह रहे हैं आराम से पहुंचिए, हड़बड़ी नहीं, आराम से पहुंचिए, वहां बैठिए, आने की प्रतीक्षा कीजिए अपने वाहन की और इसके बाद इत्मीनान से बैठिए, हड़बड़ा करके मत चढ़िए, वो आपको लेकर के जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिधर से लोग उतर रहे हैं उधर से ही आप चढ़ रहे हैं, आप बकायदे लाइन लगा लीजिए, आप बकायदे चढ़ जाएंगे, आप पाएंगे कि आप इत्मीनान से चढ़िए, इसके बाद भी ट्रेन काफी देर तक रुकी रहेगी, इसको भी आप चेक कीजिए क्योंकि हम सब बहुत हड़बड़ाते हैं। इसके बाद जाइए अपना इत्मीनान से, हड़बड़ी के साथ नहीं, अपनी सीट तक पहुंचिए, वहां बैठिए, वहां पहले से लोग होंगे, उनको नमस्ते कीजिए, अभिवादन कीजिए, थोड़ी देर जब सेटल हो जाएं तो फिर उनसे पूछिए कि आप सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, और उनसे बातचीत कीजिए, पूरी विनम्रता से बातचीत कीजिए, उनको इस बात का प्रमाण दीजिए कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं इस काम से जा रहा हूँ, और आपके अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि वो आपके प्रति विश्वास कर सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। अगर कोई सामने महिला है, बच्चा है, वृद्ध है, या आपको ऐसा लगता है कि इन्हें मेरी मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करने में हिचकिए मत। वो आपसे अगर नहीं भी कह रहे तो अपनी तरफ से पूछिए कि आप पानी लेने के लिए उतर रहे हैं तो क्या आपको भी पानी चाहिए, क्या आपको चाय चाहिए, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता दें। बीच में उनका कोई स्टेशन पड़ता है, सामान उनके पास बहुत है तो उनका सामान उतारने में आप मदद कीजिए, भले ही आपकी मुलाकात उनसे कभी नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन के जो प्रशंसा के भाव आपके लिए बनेंगे ये आपको एक अदृश्य शक्ति प्रदान करेंगे। आराम से सफर पूरा करते हुए आपकी ट्रेन आपके गंतव्य तक पहुंचेगी, फिर आराम से उतरिए, हड़बड़ाइए मत कि अरे बाप रे ट्रेन तो अभी 15 मिनट दूर है लेकिन आपका दिल धड़कने लगा है और आप जाकर के पहले से ही गेट पे खड़े हो गए हैं। नहीं, इस हड़बड़ी की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रयोगशाला है, आप प्रयोग करके देखिए, है ना। ट्रेन धीमी होने लगती है, पता है कि अब स्टेशन आने वाला है, तो आराम से उतरिए, धक्का मुक्की से बचिए और आराम से स्टेशन पर उतर जाइए। उतरने के बाद आप बाहर आइए, हड़बड़ाइए मत कि तुरंत ऑटो लेना है, तुरंत ओला करना है, थोड़ी देर रुकिए ना, अभी तो भीड़ है तो ऑटो वाले भी आपका इस्तेमाल करेंगे, दुगने चौगने रेट मांगेंगे। इत्मीनान से कि 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे रुक जाइए, कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, फिर आप देखिए कि आपका कोई ऑटो से झिकझिक नहीं होगा। आप बताइए कि मुझे यहां जाना है, इत्मीनान से उससे बात कीजिए। अगर वो दुगने तिगने दाम भी मांग रहा है तो आप अपना टेम्पर लूज मत कीजिए, आप विनम्रता से बात कीजिए। वो लोग तो इसके आदि हैं, वो रोजाना यही कर रहे हैं, कई कई बार कर रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हैं रोजाना, तो आप अपने टेम्पर को बनाए रखिए, आप उनके हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से मत सोचिए। फिर आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद देखिए, आपको हो सकता है कि उस स्थान को ढूंढने में दिक्कत हो, आपको बकायदे सूचना दे दी गई है, उसमें बकायदे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप सीधे एकेडमी में फोन मत मिला लीजिए। आपको दिया गया है ना कि आपकी मदद के लिए ये नंबर हैं, आप कोशिश कीजिए, ये भी एक मौका है जब आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद वहां तक पहुंचे, वहां बकायदे पहुंचिए, वहां जो भी मैनेजर होगा उसको नमस्ते कीजिए, आप बताइए कि मैं इस तरह से FEIS के लिए आया हुआ हूं, मेरे नाम से देखिए कि मेरा कमरा बुक होगा, बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से, ताकि वो आपसे प्रभावित हो कि यार ये कौन स्टूडेंट है, ये कैसे इस तरह से बात कर रहा है, कैसे इस तरह से बात कर रही है, क्योंकि वो भी इस तरह की बातों के आदि नहीं है। हम सब जहां पैसा दे देते हैं ना, हम समझते हैं कि ये पैसा लेने वाला तो हमारा गुलाम हो गया है, हम एकदम आप यूं कह लीजिए कि चौड़े होने लगते हैं। इस भावना को बदलिए, बकायदे इत्मीनान से बात कीजिए, और थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं तो थोड़ी देर वेट कीजिए, और इसके बाद जाकर के अपने कमरे में आराम से सारी व्यवस्था कर लीजिए, नहाइए धोइए, जो कुछ भी आपको करना है करिए। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें, ये एक्सपेरिमेंट आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा, और इसके बाद फिर जिस तरह के आपको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए समय के अनुसार आप उस जगह पहुंच जाइए जहां आपको आने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आखिरी बात यह कि आपके जो जनरल स्टडीज के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, आपको मालूम है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैं चाहूंगा कि जिन किताबों से भी आप इन चारों विषयों की तैयारी कर रहे हैं, एक एक किताब उसकी ले आए। इस बार मैं थोड़े से प्रैक्टिकल क्लासेस में कराने की सोच रहा हूं, कैसे पढ़े जाने चाहिए, हम चैप्टर्स ले लेकर के पढ़ने की शुरुआत करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको नमूना बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किताबें आपके पास रहेंगी तो इससे थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी, है ना। तो बेहतर होगा कि आप इन विषयों की वो किताब लेकर के आ जाएं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, या नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन किताब आपके पास है तो भी लेकर के आ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन केवल एक एक किताब, है ना, ज्यादा किताबें लाने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, मैं आज ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए बस इतना ही। चलिए, आप सबकी यात्रा सुखद हो, FEIS की तरफ से और मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से मैं आप सबको सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी पूरी टीम पूरे उत्साह के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप सबकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत, न्यूज में कोई खास नहीं है, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बताना चाहूंगा। और आज जो मैं आपको इंटरव्यू के प्रश्न बता रहा हूं, उसके पीछे एक मकसद है। मकसद यह है कि आपके एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आप कभी इत्मीनान से बैठ करके ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू में, उनका जायजा लीजिए। मैंने कहा इत्मीनान से बैठकर, आपको एक बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, और सुखद आश्चर्य यह कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न, मैं सभी प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए कुछ प्रश्न अगर कठिन हैं, एकदम नए से लग रहे हैं, जटिल लग रहे हैं, उटपटांग से भी चलिए मैं मान लेता हूं लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपके लिए उटपटांग है तो दूसरों के लिए भी उटपटांग होंगे, तो मामला वहां बराबर हो जाता है, हिसाब किताब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है, वो पाएंगे आप इसको बहुत गहराई के साथ और सच्चाई के साथ पाएंगे कि उनका स्तर बहुत ही सामान्य सा ही होता है। सामान्य सा का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें वो कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत गहराई में जाकर पूछ रहे हैं। और ये तीनों स्तरों पर होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन टॉपिक्स को या विषय को बहुत उसके बेसिक्स के आधार पर समझने की कोशिश नहीं करते, उसके मूल चरित्र को पकड़ते नहीं हैं, और वहीं हम फंस जाते हैं। तो हमें लगता तो है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम लिख करके आ जाएंगे, हम उत्तर भी दे देंगे, लेकिन जब मौका आता है तो हम दे भी देते हैं, लेकिन उस ढंग से नहीं दे पाते जिसकी अपेक्षा की जाती है। और इसका कारण होता है कि हम उसके मूलभूत चरित्र को पकड़ने से चूक जाते हैं। अब आप देखिए कि मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं, ये प्रश्न अभी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इस एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूं, इन प्रश्नों को आप सुनिए, और इसके बाद अपने दिमाग में ये भी लाते चले जाइए कि क्या डेली ऑडियो लेक्चर में इनकी चर्चा की गई थी। और अगर डेली ऑडियो लेक्चर में आपको लगता है कि इनकी चर्चा की गई थी, तो देखिए एक बात तो आपको माननी ही चाहिए कि फिर मुझे डेली ऑडियो लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें इन बातों की चर्चा की जाती है। यानी कि जब आप डेली ऑडियो लेक्चर पर थोड़ा सा विश्वास करने लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ईमानदारी के साथ सुनेंगे। बस मेरे कहने का केवल इतना ही मतलब है। अब आप देखिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है। ये सूरज सिंह का है, सूरज सिंह ने मुझे भेजा है। सोशियोलॉजी उस स्टूडेंट का था जिसने जिसका इंटरव्यू था, तो उससे प्रश्न पूछे गए, समाज में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, आर्थिक असमानता पर आपके क्या विचार हैं, कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्री के नाम बताइए एवं उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य जो भारतीय हों। तो देखिए सोशियोलॉजी था तो उसके लिए पूछा ही जाना था। जम्मू कश्मीर में 370 हटने पर क्या आपको लगता है कि वहां शांति बहाली हो जाएगी? अब आप देखिए CAA, NCR, NPR के बारे में संक्षिप्त बताइए, संक्षिप्त में बताइए कि इनके क्या मतलब है। इसके बारे में तो मैंने एक्सक्लूसिवली चर्चा ही की थी। PSA कानून कितना सही है? अब आप देखिए, अब आप सोचते चले जाइए कि हमने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी चर्चा नहीं की, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूं, उन्हीं प्रश्नों की जिनकी मैं डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने लिस्ट दी है मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ करके ईमानदारी के साथ सुना रहा हूं, अगर आप मेरी बात पर विश्वास कर सकेंगे तो। CAA को आप कैसे देखते हैं? इस पर नागरिक विरोध जायज है? क्या इस पर नागरिक विरोध जायज है? भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर क्या कहा गया है? फिर क्या भारत एक महाशक्ति के लिए बाकी देशों के साथ संबंधों से मुंह मोड़ रहा है? अमेरिका के संदर्भ में है। भारत श्रीलंका पर प्रश्न है कि श्रीलंका की नई सरकार क्या भारत को तवज्जो देगी? भारत की GDP लगातार नीचे क्यों जा रही है? अगर आप RBI के गवर्नर होते तो क्या कदम उठाते? एक देश एक राशन कार्ड क्या है? क्या अब समय आ गया है कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर व अक्साई चीन को भारत में मिला लिया जाए? सिविल सर्विस में आने की आपकी वजह क्या है? कोरोना वायरस भारत को कितना प्रभावित करेगा? क्रिप्टो करेंसी क्या है? दोस्तों ये पूरे जो उन्होंने प्रश्न भेजे हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। अब आपको करना यह है कि आप देखिए कि ये जो प्रश्न है इनमें से क्या कोई आपको लगता है कि प्री में नहीं पूछा जा सकता? क्या आपको लगता है कि मेंस में नहीं पूछा जा सकता? क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू में नहीं पूछा जाना चाहिए था? और अगर आपको ये सब नहीं लग रहा है कि नहीं किसी में भी पूछा जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग होती है? और अगर आपको लगता है कि नहीं यार तैयारी तो एक ही तरीके से होती है, टॉपिक लगभग वही होते हैं, पूछने का ढंग थोड़ा सा बदल जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, यानी कि एकीकृत तैयारी होती है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं विशाल सिंह, हेतसा, कपिल राजपूत, दीपक सियोरन हरियाणा से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, मयंक त्रिवेदी, गौरव साव पुरलिया वेस्ट बंगाल से, गुरुप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब से, वरुण कुमार न्यू दिल्ली से, ओंकार रविंद्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र से, दिव्या चौरे खंडवा मध्य प्रदेश से, योगेंद्र प्रताप सिंह मैनपुरी उत्तर प्रदेश से और मानस झा दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मानस झा, तुमको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री को क्वालिफाई करने के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं कि तुम मेन्स और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा करके और अंततः जो इसकी सर्वोत्तम सफलता है उसे हासिल करो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल होली है, कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आ सकेगा, तो मेरी ओर से, मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इसी के साथ ही अब मैं इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।